ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंदार अध्याय 20 श्लोक नंबर 9। सुलभायुधे विप्रशे हियनिर्वित्तास्तनु त्यजा ना तथा तीर्थ आयाते श्रद्धयाये धन त्यजा। सुलभायुधे विप्रशे हियनिर्वित्तास्तनु त्यजा ना तथा तीर्थ आयाते श्रद्धयाये धन त्यजा। सुलभायुधे विप्रशे हियनिर्वित्तास्तनु त्यजा ना तथा तीर्थ आयाते श्रद्धयाये धन त्यजा। हरे विष्णु। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की सुलभा सहज ही प्राप्त युद्धे युद्ध भूमि में विप्र ऋषे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ही निसंदेह अनिवृत्ता लड़ने से ना डरकर तनु त्यजा इस प्रकार अपना जीवन होम दिया ना नहीं तथा उसी तरह तीर्थे आयाते संत पुरुषों के आगमन पर जिनसे तीर्थ स्थल बनते हैं श्रद्धया श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक ये जो धन त्यजा संचित धन को त्याग सकते हैं। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने युद्ध से ना डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है किंतु ऐसा अवसर विरले को ही मिलता है जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दिया हो जो तीर्थ स्थल की सृष्टि करता है। तात्पर्य। न जाने कितने क्षत्रियों ने अपने राष्ट्रों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है किंतु ऐसा व्यक्ति विरले ही मिलेगा जिसने अपना संचित धन तथा अपनी सारी संपत्ति किसी सुपात्र को दान में दी हो। भवगीता में कहा गया है दातव्यमिति यद् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद् दानं सात्विकं स्मृतम्। वह दान सात्विक माना जाता है जो कर्तव्य समझकर उचित समय तथा स्थान में सुपात्र को दिया जाता है और उसके बदले में कोई आशा नहीं की जाती। इस प्रकार उचित स्थान पर दिया गया दान सात्विक कहलाता है। इस सात्विक दान से भी बढ़कर वह दिव्य दान है जिसे भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया जाता है। भगवान वामन देव बलि महाराज के पास भीख मांगने आए थे। भला दान देने का ऐसा सुयोग किसे मिल सकता था। अतएव बलि महाराज ने बिना किसी हिचक के भगवान को मुंह मांगा दान देने का निश्चय किया। मनुष्य को युद्ध भूमि में जीवन होम करने के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं किंतु इस प्रकार का अवसर शायद ही किसी को मिला हो। हरे कृष्ण। शुरू करने से पहले सभी वरिष्ठ भक्तों से और अन्य भक्तों से आशीर्वाद की याचना करूँगा ताकि मैं अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर सकूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे छोटे से प्रयास को एक्सेप्ट करें इसके फलस्वरूप हम सभी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। तो शुरुआत में जब बलि महाराज वामन देव को प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको 3 वर्ष भूमि दूंगा तो उस टाइम पर जो शुक्राचार्य उनके जो कुल गुरु हैं बहुत ही अलग अलग प्रकार के तर्क देते हैं उनको डिसवेड करने के लिए कि आप ऐसा कार्य मत कीजिए इससे आपको बहुत हानि हो सकती है। फिर कुछ देर के लिए बलि महाराज मौन रहते हैं, फिर उसके बाद उनको अपना डिसीजन देते हैं और अपने कारण बताते हैं कि मैंने ऐसा निश्चय ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि मैं वामदेव को 3 पग भूमि दूंगा। तो इससे आने वाले पहले श्लोक में वो काफ़ी कारण बताते हैं कि मैं प्रहलाद महाराज के वंश में आता हूँ तो इसलिए मैं अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकता, और भी कहते हैं कि ये धन तो मृत्यु के टाइम पे चला ही जाएगा तो इसको संभालने का फ़ायदा क्या है। तो आज के श्लोक में वो कह रहे हैं कि ऐसे अनेक से लोग हैं जिन्होंने युद्ध से ना डर कर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दी है, किंतु ऐसा अवसर विरले व्यक्ति को ही मिलता है जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दिया हो जो तीर्थ स्थल की सृष्टि करता है। भगवगीता के 2nd चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है जिसको युद्ध करने का मौका मिलता है, और अगर कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि में अपना शरीर भी त्याग देता है तो उसको स्वतः ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये भगवान भगवगीता के 2nd चैप्टर में बताते हैं। पर फिर भी युद्ध करने का मौका हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। अगर हम आज के सिनारियों में भी देखें, बहुत से लोग मिलिट्री में जाते हैं, भर्ती होते हैं, पर हर किसी को पूरा जीवन निकल सकता है पर हर किसी को युद्ध में जाने का मौका नहीं मिलता। तो युद्ध में जान देना भी एक बहुत रेयर बात है, और इससे भी ज़्यादा रेयर है जो कि यहाँ पर बलि महाराज अनुवाद में बता रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा रेयर बात है, इससे ज़्यादा विरला एक व्यक्ति है जिसको एक मौका मिलता है एक शुद्ध भक्त के संग का, जिसमें वो अपना जो संपूर्ण धन उनको दान में दे सके। यहाँ पे श्लोक में एक शब्द यूज किया गया तीर्थ आयाते, कि यहाँ पे भक्तों की बात की जा रही है कि भक्त ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जहाँ पे जाते हैं उस स्थान को वो तीर्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में जब युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से मिलते हैं तो विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं कि भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं भुवो तीर्थ ही कुर्वंती तीर्थानी स्वांता से गदाभिता, उनको बताते हैं कि आप एक चलते फिरते तीर्थ के समान हैं और आप जहाँ पे भी जाते हैं आप उस जगह को तीर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, तीर्थ ही कुर्वंती तीर्थानी। और ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हृदय में भगवान श्री कृष्ण है, स्वांता से गदाभिता। तो अगर ऐसे शुद्ध भक्त का हमें संग प्राप्त हो तो हमें बिना किसी संकोच के उनको हमें धन देना चाहिए, क्योंकि उस धन को वो भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे। तो क्योंकि ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही विरले हैं। जब निमि महाराज एक यज्ञ कर रहे होते हैं, तो इसकी घटना 11वें स्कंद में आती है, जब निमि महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं तो उनके यज्ञ में नव योगेंद्र पधारते हैं। नव योगेंद्र ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, तो उनको देख के उनकी ग्लोरिफिकेशन में वो एक श्लोक बोलते हैं कि दुर्लभम मानुषम देह देहि नामशन भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम देह, कि जो मनुष्य का शरीर है बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। देहि नामशन भंगुरा, और ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए रहेगा, किसी भी टाइम पर यह खत्म हो सकता है, शन भंगुर। इस संदर्भ में श्री बाबा बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाते हैं अपने एक फ्रेंड की, क्योंकि इलाहाबाद में होते हैं, उनकी एज 51 ईयर्स होती है, तो अपने डेथ बेड पे होते हैं तो उस टाइम पे वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे कृपा करके मुझे जितना धन चाहिए उतना ले लीजिए, पर मुझे 4 साल और दे दीजिए ना, क्योंकि मेरी कुछ योजनाएं हैं, मैं मरने से पहले उन योजनाओं को पूरा करना चाहता हूँ। और डॉक्टर कहता कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो शरीर है वो हमें किसी ना किसी दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा और उसकी डेट हमें मालूम नहीं है। प्रहलाद महाराज भी इसकी पुष्टि करते हैं जब वो अपने स्कूल मेट्स को उपदेश देते हैं। और इसके साथ ही जब वृत्रासुर का पास है माता 6 कैंटों में, तो जब सुखदेव को स्वामी परीक्षित महाराज को वृत्रासुर का पूरा प्रसंग सुनाते हैं तो परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न आता है कि वृत्रासुर तो एक बहुत ही बड़े राक्षस थे, तो उनके अंदर भगवान की ऐसे भक्ति कैसे उनको प्राप्त होगी। तो उसके बाद फिर भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना शुरू करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि मुक्ता नाम अभी सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा पर शांत आत्मा कोटिश्वपी महामुनि, कि हजारों करोड़ों जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें से एक ही एक ही आपको कृष्ण भक्त मिल सकता है, सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुनि। तो अगर ऐसे भक्त का हमें संग मिले तो बहुत ही रेयर चीज है और इसका हमें तुरंत ही लाभ उठाना चाहिए। पर अज्ञानतावश कई बार हम जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको बहुत ही साधारण मान लेते हैं, मतलब जैसे कि शीला भोपाल इस धराधाम पे थे तो बहुत ही लोगों के को अप्रोच करते थे उनको भगवान की सेवा में लगाने के लिए। ही प्रैक्टिकली लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। इतने लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, प्राइम मिनिस्टर जो महात्मा गांधी, हर जहाँ भी उनको मौका मिलता था वो उनको अप्रोच करते थे कि कैसे मैं इनको भगवान की सेवा में लगा सकूँ। और कुछ लोग रेसिप्रोकेट भी करते थे बट देट वॉज वेरी लेस, उनके कारण वो कुछ प्रकाशन कर सके, उनको एक फ्री पैसेज मिला अमेरिका में जाने के लिए। और अमेरिका में जाके फिर एक साथ स्ट्रगल करते हैं, पर जब वो हिप्पी लोगों को प्रचार करना शुरू करते हैं तो हिप्पीज को लगता है कि ये जो व्यक्ति हैं कि ये हमारा हमारे भले के बारे में सोचते हैं, हमारे सुहित हैं, तो इसलिए उनको शिला भोपाल में श्रद्धा थी, तो उन्होंने धन को ही नहीं पूरे अपने जीवन को भोपाल की सेवा में त्याग दिया। जो वो प्रभुपाद जी कहते थे वो उनको फॉलो करने का प्रयास करते थे। इसमें बहुत ही शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के उदाहरण है, जैसे कि इसके जयानंद प्रभु, तो उनके बारे में बताया जाता था कि वो पूरा दिन मंदिर में रह के सेवा करते थे, हालांकि वो इंजीनियर थे फिर पूरा दिन मंदिर में रह के सेवा करते थे, पर इवनिंग में जाके वो ड्राइविंग करते थे ना, ताकि ड्राइविंग करने से जो धन उनको प्राप्त होगा उससे वो उस सेंटर को सपोर्ट कर सकते हैं, मंदिर को चलाने में उसकी मदद कर सकते हैं। ऐसे भोपाल जी काफ़ी शिष्य थे जिन्होंने धन ही नहीं बल्कि अपना पूरा जीवन शिला भोपाल को समर्पित कर दिया, क्योंकि उनको शिला भोपाल पर श्रद्धा थी कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही रेयर है, इनका जो एसोसिएशन है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे श्लोक में एक वर्ड यूज किया गया है कि धन त्यजा, क्यों भगवान के कार्य के लिए हमें क्यों धन का त्याग करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनको क्रमशः डिस्कस करेंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो ये धन है ये किसको बिलोंग करता है ना, कि ये धन हमें बिलोंग नहीं करता, ये धन भगवान को बिलोंग करता है, क्योंकि जिन इंद्रियों का यूज करके हम धन को प्राप्त करते हैं, धन का अर्जन करते हैं, उन इंद्रियों में जो स्ट्रेंथ है वो भगवान के थ्रू आती है। भगवान भगवीता में कहते हैं कि बलम बलवताम च काम राग विवर्जिता, कि जो बलशाली व्यक्ति है उसका जो बल है वो मैं हूँ, और इस बुद्धि का उपयोग करके हम धन अर्जन करते हैं, वो बुद्धि भी भगवान से आती है। बुद्धि बुद्धि मताम च अस्मि तेजस तेजस्विनम च, भगवान भगवीता में इसका वर्णन करते हैं। तो समझदारी इसी में है कि अगर हम स्वतः ही भगवान की सेवा के लिए हम उनको भगवान के कॉज के लिए हम भगवान को धन दें, तो अगर वॉलेंटरीली हम नहीं देंगे, मृत्यु के समय तो भगवान अपने आप ले ही लेते हैं, मृत्यु सर्वहराश्च, इससे पहले वाले श्लोक में बलि महाराज इसका वर्णन भी करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा पासा ही आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के मथुरा में प्रवेश करते हैं तो मथुरा में एक वॉशरूम एक धोबी से मिलते हैं, वो धोबी के पास कुछ कपड़े होते हैं, तो कृष्ण बलराम उनके पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो कपड़े हैं आप हमें दीजिए, तो उनको भी बेनिडिक्शन भी देते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। जो धोबी होता है वो कंस के कार्य में लगा होता है, तो उनको डांटना शुरू कर देता है, तुम्हें पता नहीं तुम क्या मांग रहे हो, ये कंस के लिए ये कपड़े हैं, ये हम आपको नहीं दे सकते। तो भगवान का क्रोध आता है तो अपने हाथ के अपर पोर्शन को उसे गर्दन पे टच करते हैं और उसकी जो गर्दन होती है वो शरीर से अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद जो उसके जितने भी दोस्त मित्र होते हैं सब छोड़ के भाग जाते हैं और भगवान अपने कपड़े ले लेते हैं। फिर उसके तो इससे हम इसके पर्पज में इसमें शिला भोपाल बताते हैं कि सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है, तो समझदार इसी में आके हम भगवान को दे देते हैं। तो और इसके विपरीत जब भगवान आगे जाके सुदामा फ्लोरिस्ट को मिलते हैं तो वो स्वतः ही भगवान की सेवा करता है, उनको पुष्पमाला पहनाता है, तो भगवान को बहुत सी बेनिडिक्शंस भी देते हैं। और भगवान खुद भी भगवद्गीता में अलग अलग जगह पे खुद भगवान बताते हैं कि आपको जो अपना जो कार्य है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे अर्पित करने चाहिए। हालांकि दिस इज़ अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवगीता, भगवगीता केंद्र बिंदु है कि हमें अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं होना चाहिए। ये भगवगीता के 12th चैप्टर में जब भगवान 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक पूरा सीरीज ऑफ वर्सेस में डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को कि मई ए मना आदर्श मई बुद्धि निवेश निवशिष्य सी मई एव अतः उर्ध्वम न संशय। तो उसमें भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि मई ए मना आदर्श, कि मेरे मुझ में अपने मन का निवेश करो, मुझे अपना मन लगाओ। मई बुद्धि निवेश, मेरे अंदर अपनी बुद्धि का निवेश करो, मुझे बुद्धि लगाओ। निवशिष्य सी मई एव अतः उर्ध्वम न संशय, विदाउट एनी डाउट बिना की संशय से आप मेरे पास आ जाओ। फिर नेक्स्ट वर्स में बताते हैं कि ठीक है अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, अथ चित्तम समाधातुम नाशक नोशी मई सिरम अभ्यास योगे न तदो मम इच्छा तुम धनंजय, कि अगर तुम अपने मन को स्थिरता से मेरे में नहीं लगा सकते नाशक नोशी मई सिरम तो तुम क्या करो, अभ्यास योग का पालन करो। मीन्स यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि जो भक्ति के जो नियम एंड कानून है आप उनका पालन करो, और उनका पालन करने के बाद मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत करो। मम इच्छा तुम धनंजय, तो ऐसा करोगे तो बहुत ही जल्दी शुद्ध हो जाओगे और इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि मेरा मेरे अंदर निरंतर अब अपना मन लगा सकते हैं। उसके बाद कहते अगर ये भी नहीं कर सकते अभ्यास से आप असमर्थ हो सी, अगर इसको भी करने में आप असमर्थ हो तो मत कर्मम परमम भवा, मेरे लिए कार्य करो। मत अर्थम अपनी कर्मानी कुर्वन सिद्धिम वापस्य सी, अगर मेरे लिए तुम कार्य करोगे तो तुम्हें परफेक्शन अटेन हो सकती है। मद अर्थम, मद अर्थम का मतलब है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका जो रिजल्ट है उसका जो नतीजा हमें मिलता है वो हम भगवान को दे सकते हैं। तो इसके पर्पस में शिला बुआ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहारिक रूप से इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसका वर्णन करते हैं, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शिला बुआ बताते हैं इसमें, यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित करवाने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। यदि कोई अपने कर्मों के फलों को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्व इच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकता है, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सके। इसमें शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास धन है अगर चाहें तो हम उसको मंदिर निर्माण में या बुक पब्लिशिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा सकते हैं, अगर इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ परसेंटेज ऑफ अवर अर्निंग कुछ प्रतिशत अपने धन का हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और ऐसा करने से हम जो भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान के लिए किसी भी चीज़ का त्याग करने से हमें डरना नहीं चाहिए, है ना, जैसे मैंने लास्ट में थोड़ा पास्ट टाइम सुनाया आपको जो कि डराने वाला है, पर उससे हमें डरना नहीं चाहिए ना? क्योंकि भगवान को जब हम कुछ भगवान के लिए सेक्रीफाइस करते हैं उससे हमारा कभी भी कुछ भी लॉस नहीं होता ना, उसमें हमेशा हमारा फायदा ही होता है, गेन ही होता है। कृष्णा बुक में जब सुदामा ब्राह्मण की का जो पास्ट टाइम आता है उसमें जब सुदामा ब्राह्मण भगवान के लिए कुछ चिप्ड राइस लेके जाते हैं तो भगवान उसके बदले में उनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, तो उसमें शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि वन डज नॉट बिकम अ लूजर बाय गिविंग टू लॉर्ड, वन बिकम्स अ गेनर बाय मिलियंस ऑफ टाइम्स, है ना, कि भगवान को हम कुछ भी दे के किसी प्रकार से हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती, बल्कि इससे हमें हजारों करोड़ों गुना इससे लाभ भी प्राप्त होता है। जैसे कि मथुरा में ही जब भगवान आगे जाते हैं सुदामा फ्लोरिस्ट के बाद तो उनको वहाँ पे कुब्जा नाम की एक स्त्री मिलती है जो कि कंस के लिए वो चंदन लेके जा रही होती हैं, तो कुछ चंदन वो कृष्ण बलराम को अर्पित करती हैं उनके बॉडी के ऊपर उनको लगाती हैं, फिर उसके बाद हमें मालूम है भगवान कैसे उनके चिन्ह के ऊपर हाथ रख के उनको बहुत ही सुंदर स्त्री बना देते हैं, और बाद में उनको भगवान के व्यक्तिगत संग भगवान का व्यक्तिगत संग भी उनको प्राप्त होता है। तो इसमें बहुत अच्छी उदाहरण भी दी जाती है कि जैसे कोई व्यक्ति एक मिरर के आगे खड़ा हुआ है, शीशे के आगे खड़ा है, तो अगर वो अपना डेकोरेशन करता है, अपने आप को सजाता है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रतिबिंब है, वो अपने आप ही वो सुसज्जित हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं, तो उसे हमें ही लाभ पहुंचता है। जैसे कि प्रतिबिंब अपने आप डेकोरेट हो जाता है, तो हमारा जो फल है वो अपने आप ही उससे भगवान को देने से, भगवान को डेकोरेट करने से हमारा इससे लाभ पहुंचता है। और क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, तो अगर हम अपने जो कर्म फल हैं, अपने रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटी, अगर हमारे कर्म फल हैं उसको अगर हम भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे, तो वो हमारे कर्मों के, वो हमारे बंधन का कार्य बन सकता है इस संसार के अंदर। ये थर्ड चैप्टर में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचर, ना? कि यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है, कि यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र, कि भगवान विष्णु के लिए ही कर्म करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर्म करेंगे तो हम इस संसार के बंधन में हम फिर फंसेंगे नहीं। तो इसमें बहुत ही अच्छी उदाहरण दी जाती है कि जैसे एक बंदर है, अगर बंदर को आपने पकड़ना है, तो जो गांव में रहते हैं उनको मालूम होगा, तो बंदर को पकड़ना होता है तो एक एक घड़ा लिया जाता है और घड़े में कुछ चने डाल दिए जाते हैं। तो बंदर आता है, वो चनों के लालच में आता है, तो इस तरह से हाथ को करके वो घड़े के अंदर डालता है, घड़े के अंदर डाल के वो जब चने पकड़ लेता है तो मुट्ठी बंद कर लेता है। तो जब मुट्ठी बंद कर लेता है तो उसका जो हाथ होता है घड़े में अटक जाता है। तो इतने में शिकारी आता है और उस बंदर को पकड़ लेता है। तो बहुत कोशिश करता है वो अपने हाथ को निकालने के लिए, पर उसके दिमाग में ये नहीं आता कि अगर मैं चने छोड़ दूंगा तो हाथ अपने आप ही बाहर आ जाएगा। वो चनों से आसक्त होता है तो इस कारण शिकारी उसको आके पकड़ लेता है। तो इस तरह से अगर हम अपने फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज, हम उससे हम अगर आसक्त हैं, उसको भगवान के लिए हम त्याग नहीं कर रहे हैं जिनके लिए वो बने हैं, तो फिर हम इस संसार में फंस सकते हैं। और भगवान भागीता में अलग अलग जगह पे इस बात का वर्णन करते हैं कि आप कर्म फलों से आसक्त मत हो, कर्माणि वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो ऐसे बहुत से प्रसंग आपको भागीता मिलेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ऐसा, पर फिर भी हमें बहुत सी बाधाएं आती हैं जब कुछ त्याग करने की बात आती है, तो हम फिर भी उसको इतनी शक्ति अपने आप में ला नहीं पाते कि हम भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकें। तो कुछ जैसे बाधाएं हैं, जैसे कि हम, हमारी भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति है, इसको कहते हैं मटीरियल अटैचमेंट्स। प्रहलाद महाराज इसकी पुष्टि करते हैं 7th canto 6th chapter में कि जो व्यक्ति आसक्त होता है उसके लिए जो मनी होती है, कि मनी इज मोर डियर देन हनी, कि जो शहद से भी ज़्यादा जो मिठास होती है उसको धन में लगती है ना। जो चोर हैं, जो सिपाही हैं, वो अपनी जान को खतरे में डाल के इस धन का अर्जन करते हैं, तो इतने ज़्यादा वो उससे आसक्त हो। चोर को पता होता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो आजीवन और मुझे जेल में रहना पड़ेगा, और फिर भी वो धन के बाद इतना आसक्त होता है कि वो उसको छोड़ नहीं पाता। और दूसरा कि हमें lack of faith and conviction, कि हमें इतनी श्रद्धा नहीं होती और हृदय में इतना दृढ़ विश्वास नहीं होता या प्रोसेस के अंदर, या उस व्यक्ति के अंदर जिनको हम अपना धन दे रहे हैं, या उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कि अगर हमें इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं है, व्यक्ति पे भरोसा नहीं है, पूरा से विश्वास नहीं है, तो हम हिचकिचाते हैं उसको कुछ धन देने के लिए, उसके प्रति कुछ त्याग करने के लिए, क्योंकि हमें डर होता है कि इसको देने के बाद मेरा धन भगवान के पास पहुंच भी पाएगा कि नहीं, या इसको देने में मुझे कुछ भला हो भी पाएगा कि नहीं। तो इसको, इन चीज़ों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू गेन द स्ट्रेंथ, कि हम, हमें शक्ति मिल सके कि हम भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकें। तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हम भगवान के चरित्र के बारे में शास्त्रों में पढ़ें और सुने, बाई हियरिंग फ्रॉम प्योर डिवोटीज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि भगवान कितने ग्रेटफुल मास्टर हैं, कितने कृतज्ञ हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति कोई सेक्रीफाइस करता है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण बताते हैं, तो उसमें वो अद्वैताचार्य जी के बारे में बताते हैं कि जब शिला द्वैताचार्य देखते हैं समाज की परिस्थिति को, तो निश्चय करते हैं भगवान को बुलाने के लिए, तो उनको एक गौतमीय तंत्र नाम के ग्रंथ से एक श्लोक याद आता है। तो श्लोक इस प्रकार से होता है कि तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुकेन वा विप्रीते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलम्। उसमें इसमें क्या बताया गया है कि तुलसी दल मात्रे न, कि एक तुलसी का पत्ता देने से, जलस्य चुलुकेन वा एक चुल्लू भर पानी देने से, वन पाम फुल ऑफ वाटर, विक्रीते स्व आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलम्, क्योंकि जो भक्तवत्सल भगवान हैं वो अपने आप को उस भक्त के प्रति बेच देते हैं। विक्रीते स्व आत्मानं, तो जब अद्वैताचार्य जी के मन में श्लोक आता है तो इसीलिए फिर वो गंगा के किनारे बैठ के शालिग्राम शिला के ऊपर भगवान तुलसी लीव्स के साथ और गेंजीज वाटर के साथ भगवान की वर्शिप करते हैं, और जिनसे प्रसन्न होकर फिर भगवान ना इजरा धाम में अवतरण लेते हैं। तो जितना हम भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान की क्वालिटीज़ के बारे में सुनेंगे, तो उससे हमारे अंदर ये शक्ति आ सकती है, ये स्ट्रेंथ आ सकती है कि जिसके बल पर हम भगवान के प्रति सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और दूसरा कि जितना हम भगवान के प्रति आसक्त होंगे उतना हम बौद्धिक जगत के प्रति विरक्त हो सकते हैं, कि जितना भगवान से हमारी आसक्ति होगी उतना हम मटीरियल वर्ल्ड से डिटैच हो सकते हैं। जैसे कि जितना आपकी मंगला आरती में आसक्ति होगी उतना इजीली आप नींद से निरासक्त हो सकते हैं, नींद को छोड़ सकते हैं। तो इसके संदर्भ में, और ये आसक्ति कैसे आ सकती है, अगर हम भक्ति के जितने भी विधि विधान हैं, जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनका बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर हम उनका प्रैक्टिस करें, उनका अभ्यास करें। जब चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है कि जब नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलते हैं पानी आटी चिड़ा दही फेस्टिवल के बाद, तो सबके सामने उनके वैराग्य को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि आपका जो वैराग्य बहुत सराहनीय है, आपके पास इंद्र के पूरे ऐश्वर्य हैं, इतनी सुंदर पत्नी है, और फिर भी आप उन सबको छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास आना चाहते हैं। तो उस टाइम पे वो लॉर्ड नित्यानंद प्रभु उनको एक भरत महाराज के प्रसंग में से एक श्लोक सुनाते हैं कि कैसे जो भरत महाराज थे वो भगवान से इतने आसक्त थे कि जितनी भी उनकी अटैचमेंट थी उनको बहुत ही इजीली वो छोड़ देते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि यो दुस्ते जान दार सुतान सुहित राज्यम हृदय स्पृशा, कि जो कि बहुत ही कठिन है छोड़ने के लिए, कौन दार सुतान सुहृद राज्य, दार मतलब वाइफ चिल्ड्रन रिलेटिव्स एंड ऑपुलेंस राज्य, हृदय स्पृशा दे आर वेरी वेरी डियर टू द हार्ट, कि इतने वो हार्ट के इतने वो अच्छे लगते हैं, इतनी आसक्ति होती है कि वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप, दुस्ते जान इतने को छोड़ना इतना मुश्किल है। पर भरत महाराज ने क्या किया, जो हो युवा एव मलवत, कि उन्होंने उसको युवावस्था में छोड़ दिया, जिस टाइम पे हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रबल होती हैं, जिस टाइम पे हमारी आसक्तियाँ सबसे ज़्यादा गहरी होती हैं, और किस प्रकार से छोड़ा, मलवत, जैसे कोई स्टूल को छोड़ देता है, कैसे उसको छोड़ के कोई पलट के नहीं देखता, तो वो भी अपनी चीज़ों को एक बार त्यागने के बाद पलट के नहीं देखती, तो ऐसा क्यों कर पाते हैं वो, कि उत्तम श्लोक लालसा, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, भगवान उत्तम श्लोक को प्राप्त करने की लालसा होती है। इस वर्ड को श्रील प्रभुपाद इसका शब्दार्थ करते हैं, ईगरनेस फॉर द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड, लालसा को इस, कि जितना हम भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं उतना इजिली हम इस भौतिक संसार की जितनी भी आसक्तियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमें रोकती हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उनको हम इजिली गिव अप कर सकते हैं, उनको इजिली छोड़ सकते हैं। तो अगर हमें कभी जीवन में ऐसा मौका मिलता है, और इस कौन में तो ऐसा मौका बहुत बार मिलता है हमें, कि हमें अगर भगवान के प्रति कुछ सेक्रीफाइस करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिले, तो बिना किसी हिजक के, बिना किसी हेजिटेशन के हमें उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, ये हमारे ही फायदे के लिए, हमारे ही भले के लिए। और सिर्फ मनी ही नहीं, मनी से हम शुरुआत कर सकते हैं, ये बिगनिंग पॉइंट हो सकता है, शिला भक्तिनो ठाकुर हमने सॉन्ग में कहते हैं, मानस देहो के हो जो किछु मोर अर्पिलो तो वापदे नंद किशोर, कि जो भी हमारे पास है धन के, धन भी धन के साथ भी जो भी है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकें। और जो हर आश्रम है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गृहस्थ आश्रम की ही जिम्मेवारी है कि उनको ही भगवान के लिए त्याग करना है, धन का त्याग करना है। कोई भी आश्रम है, हर आश्रम त्याग के लिए ही बना है। ब्रह्मचारी आश्रम है, वो भी त्याग के लिए बना है, इसमें हम अपना पूरा जीवन गुरु को समर्पित करते हैं। फिर संन्यास आश्रम है, संन्यास आश्रम धन का, जो सन्यासी होते हैं ट्रैवलिंग करते हैं और जगह जगह पर जाते हैं और धन का ज्ञान का वितरण करते हैं, ज्ञान का दान देते हैं। तो जो भी आश्रम है वो सेक्रीफाइस ना है। ये वैदिक सभ्यता में ये रीति होती थी, वो हमें देना सिखाते हैं जो वैदिक सभ्यता है। पर जो आधुनिक समाज है वो हमें लेना सिखाता है कि कैसे ज़्यादा लोगों से चीज़ें ली जाएँ। तो इसलिए आजकल अलग अलग प्रकार की प्रथाएँ हैं। कोई रिलेशनशिप भी है, कोई संबंध भी है, चाहे वो पति पत्नी का है, किसी कोई भी संबंध है, वो तब तक ही टिक पाता है जब तक व्यक्ति की अपनी जो इंद्रियां हैं वो संतुष्ट हो पाती हैं। जैसे कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, तो शादी से पहले वो ट्रायल करते हैं कि अगर तुम सक्षम हो पाओगे मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, देन वी विल गो अहेड, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, शादी करेंगे। अगर नहीं सक्षम हो पाओगे देन आई विल टेक अनदर ऑप्शन, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन। तो ये एक आधुनिक समाज की देन है कि जो हमारी मानसिकता बनी है कि मुझे दीजिए। और वैदिक टाइम्स में ऐसा नहीं होता था, तो बचपन से ही प्रशिक्षण दिया जाता था। जो छोटा बच्चा था गुरुकुल में जाता था अपने गुरु के पास और उनको वो पूरा जीवन देता ही था, है ना। वो तब तक खाना नहीं खाता था जब तक उनके गुरु उनको बुलाते नहीं थे, उनको कुछ ऑफरिंग नहीं करते थे कि ठीक है तुम अपना ये भोजन ग्रहण करो। अगर भूल जाते थे फिर वो भूखा ही रहता था, वो डिमांड नहीं करता था कि मैं तो आपके लिए इतनी दूर से मांग के लेके आऊँ, इतना तो मेरा हक बनता है मुझे खाने दिया जाए, वो ऐसा नहीं करता। क्योंकि शुरुआत से ही हमें प्रशिक्षण दिया रहता था कि कैसे सेक्रीफाइस किया जाए, कैसे दिया जाए। तो जितने भी ये शास्त्रों के अंदर जितने भी ये विधि विधान दिए गए हैं, चाहे भगवद्गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, कि हमें भगवान के लिए सेक्रीफाइस करना है, उनका यही उद्देश्य है कि कैसे हम अपनी जो भोग वृत्ति है उसको हम कैसे अपनी सेवा प्रवृत्ति में बदल सकते हैं। क्योंकि ये भोग प्रवृत्ति के कारण ही हमारे अंदर ये मानसिकता होती है कि मुझे सबको मुझे देना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए। और सेवा प्रवृत्ति में मानसिकता होती है कैसे मैं सामने वाले व्यक्ति का कुछ भला कर सकता हूँ, कैसे उसको कुछ वैल्यू, किसको मैं कुछ दे सकता हूँ, उसके लिए कुछ सेवा कर सकता हूँ। जैसे कि गोपी थी वो भगवान के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार थी। नारद मुनि उनके पास आते हैं, उनको कहते हैं कि अपने चरणों की धूल दे दीजिए भगवान का सर दर्द दूर करने के लिए, तो उसके लिए भी रेडी थी नरक में जाने के लिए। पर उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान की सेवा होनी चाहिए, इसलिए गोपीज को शास्त्र के अंदर ग्लोरीफाई किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी ग्लोरीफाई करते हैं, रम्या कश्यप उपासना वज वधु वर्गीय अकल्पिता, कि गोपी से बढ़कर कोई भी आराधना नहीं है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ना? कि हमारे अंदर भी वो शक्ति आ सके, वो स्ट्रेंथ आ सके कि जिसके थ्रू हम भगवान के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें। जो भी अपना जो आसक्ति हैं, जो भी मोस्ट इंजॉयबल चीज़ है हमारे लिए, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ धन ही देना है, कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अच्छी है वो हमें भगवान के लिए सेक्रीफाइस करनी चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे इतने ही विचार थे जो शिला प्रभुपाद जी की बुक से पढ़ा था और प्रभुपाद जी के लेक्चर से सुना था। तो आपके जो करेक्शंस हैं, कमेंट्स हैं, आप दे सकते हैं। अभी प्रश्न है वो भी दे सकते हैं।